अरमान ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जानम, आंधी आए लाख बढ़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। सौ बातों की बात हो तेरा साथ, कभी ना छोड़ के जाना, बस तेरा दीदार हो तेरा प्यार, तुझी को सब कुछ माना, तेरिया हवावा विच
और जब तक हमारा रابطہ होता है बासित से, आपसे बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों ने कल का मैच देखा? पाकिस्तान का T20 गेम था इंग्लैंड के खिलाफ और बहुत जबरदस्त किस्म की गेम हुई, और लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्लोज कॉन्टेस्ट था। पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन जितना अच्छा खेलना चाहिए था उतना अच्छा नहीं खेले। बहुत अच्छी जो हमारी प्रैक्टिस गेम्स रही, बहुत अच्छी प्रैक्टिस गेम्स रही, लेकिन जब बारी आती है इंटरनेशनल क्रिकेट की या इंटरनेशनल गेम की तो थोड़े से मसाइल हो जाते हैं।
दौलत अरमान ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जानम, आंधी आए लाख बढ़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम।
ओके जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं बासित भाई भी और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई।
जी वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल चाल है बासित भाई? और हम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि हमारे पास तीन लोग हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में शामिल होना है, तो ज़रा फिर स्ट्रेट टू द पॉइंट। पाकिस्तान का T20 गेम आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उस पर एनालिसिस भी दिया था मैच से कबल और मैच के बाद भी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम कहाँ पर लैग कर गई? बहुत ज़बरदस्त जा रही थी पार्टनरशिप बिटवीन हारिस सोहेल और बाबर आजम, लेकिन एकदम से पाकिस्तान ने हारिस सोहेल आउट हुए, उसके बाद बाबर आजम बड़े बुरे तरीके से रन आउट हुए और उसके बाद आसिफ अली भी गए। क्या समझते हैं कि क्या टर्निंग पॉइंट रहा पाकिस्तान की इस हार में?
मुझे लगता है जी लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ फोकस, ये सारे बड़े अहम इश्यूज हैं। जब तक आप आइडेंटिफाई अपने प्रॉब्लम्स को नहीं करते तो उनको ठीक कैसे करेंगे? अभी पाकिस्तान जो है उसी दोबारा से एक दोराहे पे खड़ा है जिस तरह से चंद साल पहले खड़ा हुआ था कि यार हम, हमारा अगर कोई फेवरेट प्लेयर है और वो गलत डिसीजन लेता है, को गलत शॉट खेलता है, गंदी बॉल करता है, तो उसको खाम खा तो ना डिफेंड करें। जैसे हमने अभी फहीम अशरफ की, क्योंकि इसमें बहुत अहम किरदार है फहीम अशरफ का इस मैच के हवाले से, क्योंकि देखें कि ऑलराउंडर खास तौर पे जो लिमिटेड ओवर्स हैं उसमें उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा अहम होती हैं। तो उसके अंदर आप देखें कि ना वो प्रॉपर बैट्समैन है, ना वो बॉलिंग में वो कारकर्दगी दिखा पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान जो है वो लैक कर रहा है एक ऐसा ऑलराउंडर डेवेस्टेटिंग बैट्समैन 6-7 पे, जो कि जाके बिल्कुल मैच का नक्शा बदल दे। लगता है सरफराज से भी गलत डिसीजन हो गया, बहुत ही लेट आया, उसको सब कुछ छोड़ना तो नहीं चाहिए दूसरों के ऊपर। ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड ही इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर ये लड़के सारे अपनी अपनी लीग्स के लिए जब खेलते हैं, वो क्वेटा के लिए सरफराज खेलता है, इस्लामाबाद के लिए अगर फहीम खेलता है, तो लोगों को उसी तरह परफॉर्म उधर भी करना चाहिए। पता नहीं आप आसिफ देखें कि किस तरह खड़ा हुआ है, उसको मौका मिला है। आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक हारिस और बाबर क्रीज पे थे तो लग रहा था एक बड़ा टोटल लग जाएगा, मे बी 200 के करीब चल रहे हैं, 180-90 के दरमियान तो नजर आ ही रहा था। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग, एवरीबॉडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थोड़ी हो सकता है कि आप किसी और पे छोड़ दें।
अच्छा, फखर के हवाले से बताइएगा, फखर ने अभी ये जो साइड मैचेस हुए उनमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, लेकिन वो काफ़ी अरसे से लैक कर रहे हैं। जो प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है किसी भी इंटरनेशनल गेम में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लोग अमूमन तौर पे यही कहते हैं, ट्विटर पे मैं कुछ देख रहा था तो लोग कहते थे कि हर टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं है और फखर हर टीम को जिम्बाब्वे समझ के खेल रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि फखर को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी? काउंटीज़ के खिलाफ उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही लेकिन इंटरनेशनल अच्छा नहीं खेला।
नहीं हो सकते, आप जब चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे तो उस वक्त तक आप जो है लोगों ने देखा नहीं था आपको, आपकी कमजोरियों का लोगों को इल्म नहीं था। होता यह है कि वर्ल्ड एरेना में जब बैट्समैन आते हैं, जैसे इवन विराट कोहली की हम बात करें, दुनिया का जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, तो वो जब आया तो उसके बाद वो पकड़ा भी गया और उसको जुनेद ने भी कभी फंसाया, और भी दुनिया के जो बॉलर थे, एंडरसन उसको पढ़ के इंग्लैंड जब वो पहली दफा आया, लेकिन उसने अपने टेक्निक पे मेहनत की, इसी वजह से वो कोहली बना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि फखर से 200 लग गए तो वो समझता है कि भाई वो हर टीम को उसी तरह ट्वीट कर सकता है, वो जो सामने बॉलर्स हैं वो वैसे ही हैं। अगर आप उसकी 200 की इनिंग्स देखेंगे और सीरीज में जो उसके 500 के करीब रन थे, तो वो आप 5 मैचेस में देखेंगे कि उनकी बॉलिंग कितनी माठी थी, उन्होंने कितने उसके कैचेस छोड़े, ये सब चीजें आपको आपको अपने गेम को इम्प्रूव करना है यार. आप टैलेंट तो ठीक है खुदा की तरफ से होता है, लेकिन आपने अपने स्किल्स को बेहतर करना होता है. आई डोंट नो व्हाट आर द कोचेस डूइंग देयर एज वेल. कोचेस भी शायद या मेहनत करवा नहीं पा रहे हैं, या ये लोग खुद बहुत ज्यादा स्टबन हैं, ये चाहते ही नहीं है कि इन्होंने डेवलप करना है. और अभी से इनका जो सारा फोकस है वो देखिए स्टाइल के ऊपर है कि बाल कैसे बनाने हैं, सेल्फीज खींचनी है. टूर पहले भी यार इस तरह होता था, शायद उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आई एम श्योर के आप वसीम अकरम या वकार यूनिस की जो परफॉर्मेंसेस थी वो ऐसी होती थी कि वो साइड टूर मैचेस में जो मर्जी करते रहे, हम कहते चलो कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस तो देते थे ना ग्राउंड में.
बिल्कुल बिल्कुल यही बात है. इमामुल हक के हवाले से बताइएगा, क्योंकि कल भी जब वो आए उन्होंने दो तीन शॉट्स ऐसी मारने की कोशिश की कि जैसे वो गली में क्रिकेट खेल रहे हों, यानी कि एक प्रॉपर T20 की क्रिकेट में होता है इम्प्रोवाइज करना होता है. आप विकेट पे खड़े होकर खेल सकते हैं, आप सिंगल डबल करके भी तो स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद ये मेंटेलिटी सेट कर दी गई है कि T20 में जब तक आपने 6 नहीं मारना आप बैट्समैन नहीं है. क्या समझते हैं इमामुल हक का वो जो पर्ची का टैग था जो कल दोबारा लोगों ने उसे कहा कि ये पर्ची है, क्या आप कहते हैं उस हवाले से भी?
आप सही कह रहे हैं. आप देखिए ठीक है, आप बहुत बड़ी हिट्स नहीं मार सकते, कोई बात नहीं है, अगर आप में वो नहीं एबिलिटी की जब तक आप सेट नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट आप रोटेट तो करें ना स्ट्राइक को. 20 ओवर्स में बहुत ज्यादा गेंदें तो नहीं है आपने जो है, और आप ओपनर हैं, नई बॉल खेल रहे हैं, कौन सा कोई ऐसा बॉल है जो आप तक आ ही नहीं रहा, आप सिंगल ले सके, अगर आप नई बाउंड्रीट कर सकते दो नहीं ले सकते, तो आप कम से कम रोटेट तो करते रहे, आप वो भी नहीं कर पा रहे. और बात ये कि पाकिस्तान में क्या कोई और ओपनर नहीं है जो T20 में खेल सकता है? इतने सारे लड़कों को मौका मिला, PSL के अंदर भी उमर अमीन के साथ मुझे लगता है बहुत जाती होती है, कंसिस्टेंट चांस नहीं मिलता उसको. हमारे पास साहिब ज्यादा फरहान है, उमर सदीक एक लड़का था, चंद और लड़के ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया कि वो जो है वो खेल सकते हैं. इवन कामरान अकमल को भी अगर आपके पास कोई भी ओपनर है ही नहीं तो कम से कम शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर तो वो बहुत ही ज्यादा डेवेस्टेटिंग बैट्समैन है, तो आप उसको ले आओ. तो ये फेवरेटिज्म खत्म होनी चाहिए, जब तक ऐसे नहीं होगा तो कैसे प्रॉस्पेक्ट करेंगे? वर्ल्ड कप सर पे है और अभी तो बहुत ही ज्यादा जो है वो मायूस कुन कारकर्दगी भी है. आप पीछे आखिरी 15-20 मैचेस देखें तो हमने कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, हम देख के हैरान हो जाएंगे. हम 75-80% मैचेस हर फॉर्मेट में हारते चले आए हैं. तो जाग जाइए से पहले लेट हो जाए, ये 5 मैचेस हमारे लिए बहुत अहम है. अगर इसमें हमारी टीम कॉम्बिनेशन बेहतर ना हुई तो उसके बाद कोई भी नहीं, बस मौजूदा ही होगा.
अच्छा बासित भाई ये बताइए कि आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट क्या रहा, कहाँ पे पाकिस्तान, कौन सी ऐसी मोमेंट थी जो पाकिस्तान ने मिस की और वो मैच जीत सकते थे? ऑब्वियसली बैटिंग में बहुत ज्यादा मोमेंट्स थी, लेकिन बॉलिंग में कोई इतनी मौसर कारकर्दगी नहीं नजर आई मास्वाए इमाद के. इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इमाद के सिवा कोई नहीं लगा कि कोई बॉलर वहां पे अच्छी बॉलिंग कर सका. हसनैन ने भी सिर्फ पेस है उसके पास, लेकिन उसके पास वैरायटी नहीं है. हसनैन को सिर्फ पेस के ऊपर आप चांस दे रहे हैं. मोहम्मद आमिर को आपने 12 लड़कों में शामिल किया, आप साथ लेके गए, लोगों को क्रिटिसिज्म का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन उसे साथ खिला नहीं रहे हैं, तो फिर उसे साथ लाने का क्या मकसद है? आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी मोमेंट थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है?
तनवीर मुझे लगता है कि आप बात कर गए हैं कि एक तो अगर तो हमने आमिर को नहीं खिलाना वर्ल्ड कप वो और बात है, लेकिन अगर आमिर की हमें जरूरत है जितनी शायद आमिर को वर्ल्ड कप की इतनी जरूरत है जितनी पाकिस्तान को शायद आमिर की जरूरत है, क्योंकि आमिर के पास बड़ा मैच या जो कोई भी क्रंच सिचुएशन होती है अगर वो विकेट नहीं भी लेता तो कम से कम रन जरूर रोक सकता है. वो एक दो ओवर आपको टुवर्ड द एंड भी टाइट दे सकता है, जो कि हमारे सामने यार इस तरह की इससे अच्छी बैटिंग तो आमिर कर लेता है, इवन हसन कर लेता है, जो फहीम अशरफ कर रहे हैं. मैं खामखा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मेरी कोई जाती किसी से वो अनाद नहीं है, दुश्मनी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे भी आप बात करते हैं तो चंद लोग आपके वो कहते हैं ना गले ही पड़ जाते हैं. यार देखें हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि भाई तुम परफॉर्म तो करो, ठीक है. उसने जो एक ओवर किया है कितना ज्यादा प्रेशर था और इतना आसानी से उसको जो है वो
17 रन पड़े उस ओवर में,
रन नहीं पड़ने. जी बिल्कुल, उसका ये टर्निंग पॉइंट था. दे शुड हैव गॉटन डन विद ओवर्स. शुरू में ही कप्तान को चाहिए था इस तरीके से प्लान करता कि वो उससे फहीम से शुरू में ही बॉल करा ले, अगर उनको लगता है कि जो जिन ओवर्स में प्रेशर कम हो सकता था अगर वो इतना ज्यादा वो ट्रस्ट कर ही रहे हैं वो नहीं अगर निभा पा रहे तो फिर वो उसका मतलब है कि उनको आगे मौका नहीं दिया जाना चाहिए, किसी और को वो मौका मिलना चाहिए उसकी जगह।
अच्छा बासित भाई, ये बताइएगा, हसन ने आपने देखा होगा कि पेशावर जलमी के लिए तमाम जितने भी ओवर्स पीएसएल में किए वो पहले सेशन में किए, जो पहला पावर प्ले होता है उसमें किए, लेकिन कल सरफराज ने उसे बिल्कुल एंड तक रखा, यानी कि उसे डेथ ओवर्स दिए गए। क्या आप समझते हैं कि हसन में वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो उसकी उसके अंदर वेरिएशंस हैं, वो यॉर्कर्स नहीं इतने करता, वो वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है, तो क्या ये गलत डिसीजन नहीं था उसे पहले उससे बॉलिंग करवानी चाहिए थी, ना कि डेथ ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में फिर वो बड़ा लीथल भी साबित नहीं हुआ। हालांकि आपने देखा होगा कि लाहौर कलंदर के लिए शाहीन शाह जो थे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी थी, हम एज अ फैंस हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं, तो ये जो डिसीजन मेकर पीपल हैं क्या वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते?
मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि प्लान तो नजर ही नहीं आ रहा ना कहीं पे भी, ये तो लगता है कि कोई ऐसे ही बस लगे हुए हैं और टूर एंजॉय करने गए हुए हैं। आपके उधर कार्डिफ में इन्होंने लगता है शॉपिंग वॉपिंग अच्छी की होगी, मॉल्स में जाके घूमे फिरे होंगे, फोटो वोटो खिंचवाए होंगे, दोस्तियां यारियां कर रहे हैं, कभी कोई किसी कोच के घर जाके उसकी फोटोज आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, ये सब चीजें अपनी जगह है भाई, परफॉर्म तो करो अल्लाह के बंदो, क्या तुम्हारी प्लानिंग है? अब वही बात की अगर ले मैन जो है वो लोग इतना सारा सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, गेम अवेयरनेस है, तो इन लोगों को क्यों नहीं है? दे आर बीइंग पेड हेफ्टी अमाउंट्स एंड एट द सेम टाइम दे आर एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान। ये इन्होंने जो है आप देखिए कि कितने सारे हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो कल लोग मायूस नजर आए हर जगह, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। पाकिस्तान में पहले ही
बासित भाई माजरत, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया, उसामा जावेद कह रहे हैं कि कल मैं ये यहाँ से हडर्सफील्ड से ऑल द वे टू कार्डिफ गए थे गेम देखने, अब वो कहते हैं कि आई वाज इन द स्टेडियम, फखर इजंट अ हार्ड गाय टू प्ले, जो हमारे भाई हैं इमाम, ही इज़ नॉट T20 प्लेयर, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि टीम एटीट्यूड वॉज नॉट गुड व्हाटसोएवर, दे वर नॉट सीरियस अबाउट द गेम।
मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात की इन्होंने, और वही बात जो आप प्लानिंग के कह रहे हैं कि यार इफ दे कुड सी के हसन जो है अगर वो डेथ ओवर्स में ही कैन गो फॉर द रन्स, तो यार यू शुड हैव अनदर ऑप्शन। आई कांट अंडरस्टैंड कि मोहम्मद इरफान नहीं है टीम में क्योंकि कोच को पसंद नहीं है, शायद वहाब रियाज नहीं है क्योंकि पता नहीं किसको ना पसंद है। डेथ ओवर्स में जो पेशावर जर्मी के लिए भी जिसने सबसे ज्यादा मुतासर कुन बॉलिंग की थी वो वहाब रियाज है, तो वहाब रियाज आपको क्यों यार जाती तौर पे ना पसंद है भाई? ठीक है, वी वांट हिम इन द वर्ल्ड कप, अगर ऐसे ना हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा यार। आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है, बॉलर कैन हैव अ बैड डे, बट स्टिल यू डोंट हैव एनीबॉडी विद दैट मच एक्सपीरियंस, विद दैट मच पेस। आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, ये पर्सनल नेपोटिज्म और इन चीजों से इनको बाहर आना चाहिए, और डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि खुद इंजमाम को सोचना चाहिए। उन्होंने जो इज्जत कमाई है वो सिर्फ सामने है सबके के, इमाम की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जो सबसे बढ़ के उसका एटीट्यूड है, खास तौर पे जब उसने कराची में शेन वॉटसन के साथ जैसे वो पेश आया, उसके बाद ही हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट, ही शुड लेट हिज बैड टॉकिंग, और दीस बॉयज शुड ग्रो अप, दे शुड परफॉर्म ऑन द फील्ड रादर देन जस्ट एक्टिंग लाइक क्रिकेट सुपरस्टार्स, जो ये कुछ भी नहीं है, इनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं। आप फहीम अशरफ का रिकॉर्ड जो भी बंदा हमें सुन रहा है वो गूगल करके सुन सकता है, क्रिक इन्फो पे चेक कर सकता है खुद कि यार उसकी कितनी एवरेज है, उसके मैचेस कितने हैं और उसके रन कितने हैं, ठीक है, कि वो कितनी एवरेज है उसकी, बॉलिंग देखेंगे कितनी ज्यादा उसकी बड़े स्टैट्स हैं सारे, मैं स्टैट्स क्या बताऊं, एवरीबॉडी कैन चेक दैट देमसेल्व्स।
बिल्कुल,
तो इस वजह से ये
अच्छा बासित भाई, अब जो हमारे पास टीम तो थी वो जो सिलेक्ट कर ली,
पर्ची है ना सारी,
बिल्कुल बासित भाई, टीम तो वो अब जो सिलेक्ट होगी, अब ये जो करंट टीम है 15 लड़के दिए हैं वर्ल्ड कप में, क्या स्ट्रेटजी हो, क्विकली से जरा 2 से 3 मिनट में समअप कीजिएगा कि क्या अब स्ट्रेटजी अपनाएं कि पाकिस्तान कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंच सके, जो कि बड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी पाकिस्तान टीम को?
आपकी जुबान मुबारक करे, अल्लाह करे कि जी हम फाइनल फोर में भी आए, स्टेजेस को जो है वो पार करके जीते भी, लेकिन जो ऑन पेपर है वो कुछ नजर नहीं आ रहा इस तरीके से, उसकी रीजन यही है कि हम अभी तक सेटल नहीं है। अगर हमने उन पिचेस खेलने तो दैट्स द बेस्ट टाइम टू गिव आबिद अली गुड रन, आप आबिद अली को टेस्ट करें, उसने बड़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसका डोमेस्टिक अच्छा है, आई थिंक अगर वो चल जाता है लड़का, तो आपके पास एटलीस्ट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता फखर का बल्ला नहीं चलता या इमाम जो है इंजरी होती है, कोई और वजह होती है, तो एक तो हमारे पास वी शुड बी श्योर के हमने क्या करना है. फिर उसके बाद आपको आसिफ को जो है कंसिस्टेंट चांसेस देने हैं, 3 मैचेस दे लें उसको, या देख लें कि किस तरीके से चलना है ताकि हमारे पास लो डाउन में एक हिटर प्रॉपर मौजूद हो. या ये फिर रोल फहीम को देने की कोशिश करें, उसको बताओ भाई कि हम तुम्हें 6 पे भेजेंगे या 7 पे भेजेंगे और तुमसे 17 रन नहीं चाहिए हमें, हमें तुमसे एक अच्छी इनिंग चाहिए. तुमने मैच खत्म करके आना है, चाहे चेस कर रहे हो चाहे पहले टारगेट सेट करें, तुमने आखिरी गेंद तक उधर रहना है मौजूद, ये तुम्हारा रोल होना चाहिए. क्योंकि ये कोई रोल इतने अचंभे वाली बात नहीं है, इतने ही मैचेस खेल के आज हार्दिक पांड्या ने इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिता दिए हैं. आप इंग्लैंड टीम के अंदर देखते हैं बहुत सारे ऐसे लड़के हैं वो नए आए हैं. आप कल दिल्ली को देख लें कि किस तरीके से वो खेल रहा था.
विंस ने बहुत अच्छा खेला, विंस ने भी अच्छा खेला.
और ये उनकी मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 T20 साइड है और हम लोग जो है इंग्लैंड की बी टीम से हारे हैं. क्यों? क्योंकि कल ना बेन स्टोक्स खेल रहा था, ना कल बटलर था, ना बेस्टो था, ना मुइन अली था, ना प्लंकेट था, और भी कई उनके सुपरस्टार्स नहीं खेल रहे, हिल्स फॉर सम अदर रीजंस नहीं खेल रहे, रॉय भी नहीं खेल रहे थे. तो आप मुझे बताएं, तो उनकी तो बी टीम भी नहीं है, सी टीम खेल रही थी. तो इसके बावजूद हमारी ये जो है परफॉर्मेंस रही है. तो आगे फिर ऐसे ही है. फिर पहले इनसे ये पूछ रहे हैं, हमें इनसे ना सिर्फ एक सवाल करना चाहिए. आप लोग जो है जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, इनके प्रेसेस होते हैं, आप पाकिस्तान मैनेजमेंट से सवाल करें कि पहले ये बता दो कि अगर जीते तो किसका क्रेडिट है, और जब ये आपको पता चल जाए वो कप्तान है, कोच है या सिलेक्टर्स हैं या फिर आपका बोर्ड है, तो इसी तरह को फिर अगर हारोगे तब भी जो परफॉर्मेंसेस होंगी उनकी जिम्मेदार भी तुम होगे. इस तरह नहीं हो सकता कि आप मलबा कल को सरफराज पे डाल दें और आप कहें कि जी ये कप्तान की प्लानिंग नहीं थी ऐसे. ठीक है, कप्तान तो इतना ज्यादा पाकिस्तान में बदकिस्मती से पावरफुल होता ही नहीं है.
सही बात.
आपने कोच को इतने ज्यादा इख्तियार दिए हुए, तो आप उससे सवाल भी तो करो ना. ये है कि सिर्फ सिर्फ उसके साथ कोई और टैग लगा हुआ है तो आप जो है उसको बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं. सोहेल खान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी लास्ट इंग्लैंड टूर पे से पहले जब ये गए टेस्ट सीरीज को बराबर करके आए थे, तब भी जो है सोहेल को इन्होंने निकाल दिया क्योंकि इसको कोच को पसंद नहीं था. इसको उमर अकमल पसंद नहीं है, मिकी को. यार पसंद नापसंद जाती पे तो नहीं चीजें होनी चाहिए ना. जो परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक में आपके PSL में, दे शुड बी सिलेक्टेड.
सही बात.
What's the problem? आपको जो है जातियात से निकलना है और मुल्क के लिए सोचना है.
बहुत शुक्रिया बासित भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वक्त देने के लिए. और थैंक यू वेरी मच,
गुड वर्क, ऑल द बेस्ट भाई.
थैंक यू भाई जान, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत से ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. On 107.9 FM, DAB in Manchester, Glasgow and Birmingham. Online at radiosangam.co.uk and via our app. This is Radio Sangam, the only Asian music station you need. Okay guys, welcome back once again. You are tuned into Radio Sangam 107.9 FM. And 4:39 on the clock, beautiful Monday evening, 6th of May 2019. This is your Veer Tanveer from now all the way up until 7 o'clock. And we've got some special guests all the way from Pakistan, especially. We were just talking to Basit Subhani about this Pakistan versus England. And now we've got Ghaffar Bhai all the way from Abdul Ghaffar Bhai. Another senior journalist, a sports journalist from Pakistan. He is actually working with Dawn News. He does his own sports show called Replay at Dawn News. And he is the head of sports at Dawn News. So we'll be talking to him about this T20 international between Pakistan and England, of course. We'll take his input into the game, what caused Pakistan to lose that game. So keep it locked. Okay, guys, as we have promised you, we've got Abdul Ghaffar all the way from Pakistan with us, and we'll be talking to him about this cricket match between Pakistan and, of course, England, the T20 International in Cardiff, which sadly Pakistan lost. But well, hum inse poochenge ki kya reason bane Pakistan team. Badi zabardast kism ki preparation thi aur bahut zabardast kism ki jo side games thi, jo warm up games thi, unme bada zabardast kism ka Pakistani khiladiyon ne perform kiya. Lekin jab kabhi bhi international stage ki bari aati hai, Pakistani khiladi jo hain wo buri tarah nakam ho jate hain. Kya wajah hai? Assalam alaikum Abdul Ghaffar bhai.
Waalaikum assalam sir.
भाईजान, सबसे पहले आप बताइए, कराची का मौसम कैसा है? जबरदस्त किस्म का मौसम है वहां पे, और आप कैसा फील कर रहे हैं?
देखिए, कराची में तो अब कुछ अरसे से गर्मी बहुत शदीद हुई हुई, और लेकिन बहरहाल आपके सुनने वाले स्पेशली हमें यूके में तो रोजा आज था, सबको रमजान मुबारक. कराची में इस वक्त जो रमजान की फेस्टिविटी है वो अब आहिस्ता से दिखाई दे रही है, और बहरहाल सब कुछ माशाल्लाह ठीक है.
अच्छा अब्दुल गफार भाई, ये बताइएगा कि कार्डिफ में पाकिस्तान का जो T20 मैच हुआ इंग्लैंड के साथ, एक वक्त तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो 200 से ज़्यादा रन्स करेगी, बाबर और हारिस सोहेल जब खेल रहे थे, लेकिन एकदम से जब वो दोनों आउट हुए उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो विकेट्स हैं वो टंबल हुई, और वही जो पुरानी कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ स्टोरी है, अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है तो लोअर ऑर्डर जो है वो नाकाम हो जाता है. क्या समझते हैं, क्या रीजन बना, क्या वजह थी? इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग विकेट थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम के सिर्फ दो खिलाड़ी जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सके और बाकी खिलाड़ी नाकाम हुए, क्या वजह थी?
देखिए, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का आखिरी 4 से 5 साल का मुआवजा करते हैं, 2015 के वर्ल्ड कप से बाद से लेकर 2019 तक, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की एक चीज है जिस पर सेलिब्रेशन की जा सकती है या जिसको एक हाई पॉइंट करा दिया जाता है. लेकिन अगर आप इन जनरल पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को देखें, स्पेशली ओडीआई इसको, तो पाकिस्तान, हमें ये मानना पड़ेगा, ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि जो जैसे जैसे ये गेम तेज होता जा रहा है, इसकी जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जो एक तेजी आती जा रही थी, पाकिस्तान इसका मुकाबला करने में अब तक थोड़ा सा ना मुश्किल का शिकार है. हमारी बैटिंग अच्छी है लेकिन हमारे पावर हिटर्स नहीं है. अगर हमारे बैट्समैन अच्छा खेलते भी हैं, जैसे कल बाबर या हारिस ने खेला जैसे, तो हमें वो मॉर्गन वाली अप्रोच नजर नहीं आई. हमें वो अप्रोच नजर नहीं आई जो विराट कोहली की होती है या क्लेन मैक्सवेल की या स्टीवन स्मिथ जब आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे, वो एक स्टेटमेंट होती है, एक इंटेंट होती है जो ऑपोजिशन को हिला देती है. खेलते जरूर अच्छा है, वो जो एक रुथलेस अप्रोच चाहिए ना वो नहीं है. और जब तक आप इस मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आई गेस सेड के पाकिस्तान को आप वर्ल्ड कप में बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं. लेकिन अगर आप इन जनरल हकीकी इसका मुआवजा करें पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट का, T20 में तो हम बेहतर हैं, तो पाकिस्तान की टीम जो है ना स्ट्रगल कर रही है, और ये स्ट्रगल इसी वजह से है कि हम उस पेस को मैच नहीं कर पा रहे, या हमारे पास उस मैार के खिलाड़ी या वो उस रिक्वायरमेंट के खिलाड़ी उस तरह आपके पास कम्बिनेशन में नहीं है. ऑपनर अच्छा है तो आपका मिड ऑर्डर में कोई मसला है, मिड ऑर्डर अच्छा है तो लेट ऑर्डर में प्रॉब्लम है, फास्ट बॉलर अच्छे हैं तो विकेट टेकिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम है, स्पिनर है तो आपके पास कहीं ना कहीं रन कंटेन करने का, मतलब इन जनरल पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने की जरूरत है लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिहाज से. और आपको जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, आपको इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को फॉलो करना होगा.
अच्छा गफार भाई, आप तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसे बहुत क्लोजली देख रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया भी कि पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी नहीं, क्या वाकईतन जो डोमेस्टिक जो हमारा चल रहा है, जितने भी अभी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो खेल रहे हैं डोमेस्टिक, क्या हमारे पास डोमेस्टिक में एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो 6 या 7 नंबर पर जाके हिट मार सके या अच्छा खेल सके? अभी एसन, जब मैंने भी अपने वर्ल्ड कप की टीम के हवाले से बात की थी, तो एसन जो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेले, मेरा ख्याल है वो स्पिन बॉलिंग करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो लड़के ने परफॉर्म किया है, 1 डाउन जाके बड़ी अच्छी हिटें भी मार रहा था, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, तो ऐसे लड़कों को क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? क्या इसके अलावा, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसे लड़के नहीं है जो 6-7 पे जाके वाकईतन हिट कर सकें, जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके साथ मैच कर सकें?
देखिए, आपके पास जो पावर हिटिंग का प्रॉब्लम है ना, ये इस वजह से भी है कि आपके जो बड़े नाम है ना, जिनमें शेख मलिक है, हफीज है, खुद सरफराज अहमद है, या इसके अलावा एक दो सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको अपना गेम थोड़ा सा ना फास्ट करने की जरूरत भी है. इसमें बिल्कुल हकीकत पसंद आना बात करनी चाहिए कि आपको अपना गेम मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से, उसमें हफीज तो कामयाब है किसी हद तक, शेख मलिक और सरफराज को वर्ल्ड कप में अभी करके दिखाना है. आप जो नए टैलेंट की बात करें, आसिफ अली को हमने मौका दिया लेकिन आसिफ अली कामयाब नहीं हुए. बात यह है कि पाकिस्तान की जो PSL है वहां से आपको एक राइजिंग स्टार तो मिल जाता है, लेकिन मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, एक आपको जो मेच्योरिटी चाहिए, एक जो मैच विनिंग एबिलिटी आपके अंदर, जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होनी चाहिए, उसका मुझे फुकदान दिखाई देता है। जो शादाब है, हुसैन तलत है, इसके अलावा जब आए थे बाकी प्लेयर्स जैसे फहीम अशरफ है, ये सब डोमेस्टिक लेवल पर या कहीं ना कहीं तो ग्लिम्स इनकी है परफॉर्मेंसेस की, लेकिन मुझे एक वर्ल्ड क्लास टीम के अंदर जो आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए होती है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्या होती है, जब आपकी टीम प्रेशर में हो, तो जो 99 के वर्ल्ड कप में लास्ट क्लोजर करते थे, साउथ अफ्रीका की टीम हार रही होती थी वो सिंगल हैंडेडली मैच निकाल लेते थे, या ये चीज जब अब्दुल रजाक पाकिस्तान के लिए करते रहे, यही चीज जो है वो विराट कोहली इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो हमारे प्लेयर्स में एबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। हम जब एज अ यूनिट खेलते हैं तो सब परफॉर्म कर रहे हैं, तो जी सब परफॉर्म कर लिए, लेकिन जहाँ पाकिस्तान टीम गिरती है तो कोई एक ऐसा प्लेयर मुझे भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा जो एक ऐसी इनिंग खेले जो आउट ऑफ बॉक्स हो। एक बार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने बात की थी, वहां भी हाल ही जो टूर्नामेंट हुआ और रन बने, लेकिन वो ऐसी पिचेस से बने जो बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी, रावलपिंडी की पिच, तो ऐसी पिचेस आपको दुनिया भर में हर जगह नहीं मिलेंगी। तो आपको अपनी जो नई नस्ल है, जो आपकी ए टीम आ रही है अंडर 16 है, आपको इन पे काम करना होगा। आपको एक जैसे एंड्रयू स्ट्रॉस या जैसे और दुनिया में इस पर जो निस्बतन के जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं, आपको उनको हायर करना होगा जो ये चीज एज अ सिस्टम में पॉलिसी के तौर पर लेकर आए कि आपको तेज खेलना है, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए अपनी प्रेजेंस को फेल्ट कराना है। तो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा इस जानब काम करने की जरूरत है, और अगर हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी।
अच्छा अब्दुल गफार भाई, हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आया, उसामा जावेद जो यहाँ से यॉर्कशायर से स्पेशली वेल्स कार्डिफ में जाके ये मैच देखने गए थे, वो कह रहे हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज जो लड़कों की थी वो ऐसी नज़र नहीं आई ऑन द पिच कि वो लड़के मैच जीतना चाह रहे थे या कोई सीरियस थे अबाउट द गेम। उनका कहना है कि फ़खर हार्ड बॉल प्लेयर है लेकिन इज़न्ट अ हार्ड बॉल प्लेयर, और वो कह रहे हैं कि जो इमाम है ही इज़ ऑल राइट बट ही इज़ नॉट अ T20 मटीरियल। और कल भी सोशल मीडिया पर भी उनके बाद जब वो फेल हुए हैं तो उसके बाद दोबारा से पर्ची का शोर भी उठा है, और हकीकतन कल जब इमाम बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी शॉट्स खेलने की कोशिश की जैसे वो गली में क्रिकेट खेल रहे हो, वो यहाँ पे इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो गली में एक नॉर्मल कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है। तो ये माइंड सेट जो है ये ऑब्वियसली कोचेज ने लेके आना है, मैनेजमेंट ने लेके आना है, तो क्या जैसे कि आपने बात भी की कि वो चीज़ माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन हमारे लड़कों में भी वो फील नहीं है, हमारे लड़कों में वो सीरियसनेस नहीं है, ये फुकदान कहाँ से है?
लेकिन ज्यादा अपने इमाम की बात की, आई थिंक उन्होंने एक बहस है कि उनको मौका जब मिला तो वो क्या बाकी डिजर्विंग लोगों के मुकाबले में ठीक था गलत था, लेकिन ये भी कोई दो आरा नहीं है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, स्टैट्स हैं, वो बड़े बेहतर हैं। उनकी जो कंपेटिटर है इस वक्त जितने भी, वो उनसे बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं। और जहां तक उनकी T20 की बात है, तो चूंकि ये T20 था, आपके स्क्वाड में ऑप्शंस मौजूद थे, आबिद अली को मौका भी मिल सकता था, लेकिन चूंकि इमाम खेलते हुए आ रहे हैं, पेशावर जलमी के लिए भी उनकी परफॉर्मेंस रीजनेबल रही थी, तो मेरे ख्याल में एक आज मैच में उनको ट्राई करने में हर्ज नहीं था, क्योंकि असल आपका फोकस था 5 मैचेस की वनडे सीरीज है। आपने बिल्कुल ठीक निशान देखी कि कल फील्डिंग के अंदर प्रॉब्लम थी, कल हमें थोड़ी सी कमिटमेंट नजर नहीं आई, लेकिन ये होता है जब आप 5 मैचेस देखे ना, इस टीम ने एक साथ नहीं खेले थे, प्रैक्टिस मैच ही होता है। कल जब एक इंटरनेशनल मैच आया, प्रेशर पड़ा, लड़के एक्सपोज हुए, नजर आया कि लड़कों को बेहतर करने की जरूरत है, तो आप ये बेहतर आपकी काम है टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, कोच का, कि वो आप लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा टाइट करें उनको, कि 5 मैचेस की वनडे सीरीज के अंदर 100% कमिटमेंट हो, उनकी फील्डिंग बेहतर हो, मैच विनिंग एबिलिटी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जो लड़का प्रेशर में अगर परफॉर्म करेगा तो फिर वही कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि अगर आप अंडर प्रेशर नहीं खेल पाते या फील्डिंग नहीं कर पाते, बॉलिंग नहीं कर पाते, जो फहीम अशरफ का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, जो इमाद टीम मैच विनिंग एबिलिटी अभी तक नहीं दिखा सके, आसिफ अली का प्रॉब्लम है, फिर आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप इन लड़कों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए क्या बड़े स्टार बनेंगे, तो ये आई थिंक मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन फील्डिंग की जहां तक आपने बात की, तो वो वाकई पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाने की जरूरत है।
अच्छा अब्दुल गफार भाई, ये बताइएगा कि कल आपके ख्याल में ऐसी कौन सी मोमेंट थी जो कि मैच टर्निंग मोमेंट बनी, पाकिस्तान उस वजह से मैच हारा। आर्चर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्रेस बॉलर है, लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उन्होंने वो फेस कर चुके थे क्योंकि ये क्वेटा के लिए खेले हैं, तो इनके लिए ये नया प्लेयर नहीं था, इवन दो ही वॉज बॉलिंग एट इंग्लिश विकेट, बट लेकिन फिर भी ही वॉजन दैट एक्सप्रेस, क्योंकि आपके पास हसनैन मौजूद है, आप 88-90 की स्पीड से वो भी बॉल कर रहा है, आर्चर की भी यही ऑलमोस्ट स्पीड है, तो कुछ नया नहीं था, वैरायटी नहीं थी, पेस था, लेकिन इसके बावजूद आर्चर को विकेट मिली, हसनैन को विकेट नहीं मिली। अप्रोच जो थी इंग्लैंड की तरफ से वो बहुत ज़बरदस्त अप्रोच थी टू द बॉलर्स, लेकिन हमारी तरफ से खिलाड़ी लगे कि वो बहुत ही अनप्रिपेयर थे। तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी गेम चेंजिंग मोमेंट थी इस मैच में जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा?
गेम चेंजिंग मोमेंट आई थिंक पाकिस्तान ने जो आखिरी 5 ओवर में से 40 रन किए, अगर आप 200 रन करते या 190 रन करते तो शायद आप मैच में ज्यादा बेहतर होते हैं। फिर ऑब्वियसली इससे कनेक्टेड जो एक पहलू है वो पाकिस्तान की फील्डिंग है, जो हमने बहुत ज्यादा चांसेस यूटिलाइज नहीं किए। लेकिन अगर आप इन ओवरऑल देखें तो शादाब की कमी बहुत महसूस हुई है, क्योंकि वो आपके पास एक जेन्युइन लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर जो है ना, आपको इस टी ट्वेंटी और वनडे में विकेट लेके देता है, फास्ट बॉलर पे पिटाई होती है, मीडियम पेसर्स को, तो अच्छा स्पिनर आपका होना बहुत जरूरी है। लेकिन मसला ये है कि शादाब अनफिट है या सिर्फ फॉर्म में नहीं है, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक कैप और एक जो मसला है वो क्रिएट हुआ हुआ है, तो आप देखना होगा शादाब की वापसी कब होती है, क्योंकि टीम कम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए परफेक्ट नहीं है। जोफ्रा आर्चर की बात की तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने उनको नहीं खेला, लेकिन वो बारह एक बेहतर लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, हसनैन तेज बॉलिंग कर रहे थे लेकिन शॉर्ट पिच कर रहे थे, जोफ्रा आर्चर ने फुल लेंथ भी किया, साथ उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल का एक लीथर इस्तेमाल किया, सिर्फ शॉर्ट पिच वो नहीं थी जो शॉर्ट पिच है बल्कि उन्होंने बैट्समैन को टारगेट किया, उनकी एक्सपोज किया, उनके ऑब्वियसली इंग्लैंड के बैट्समैन तेज बॉल को बेहतर खेलते हैं, लेकिन वायरल जोफ्रा आर्चर के पास एक्सपोजर रहा है, वो आईपीएल खेल के आए हैं, उन्होंने इससे पहले भी दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, मोहम्मद हसनैन अभी बहुत रिलेटिवली है और यही एक चीज उनके ऊपर जो है वो एक डाउट रेस करती है कि क्या अभी उनका
अच्छा, वही इसी बात को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप मोहम्मद आमिर को साथ लेके भी गए हैं और अगर आप मोहम्मद आमिर को खिलाएंगे नहीं तो फिर उन्हें साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से भी की जा रही है बात। एक मिनट, ओके जनाब, हमारा रابطہ एक बार फिर से हो चुका है गफार भाई के साथ और उनसे बात कर रहे थे हम इस हवाले से कि हसनैन के हवाले से भी बात हुई और यहाँ पे भी यूके में बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपने मोहम्मद आमिर को खिलाना नहीं था, आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया लेकिन आप उसे साथ लेके आए हैं, तो क्या आप समझते नहीं है कि हसनैन की जगह अगर कल मोहम्मद आमिर को चांस दिया जाता तो शायद जो रिज़ल्ट था वो मुख्तलिफ होता, क्योंकि मोहम्मद आमिर यहाँ पर काउंटी भी खेल चुके हैं और उन्हें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, क्या आप समझते नहीं है कि ये गलत पिक था जो किया गया?
देखिए, इसमें मैं आपको एक बात कहूंगा कि जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में किए और जो अब पाकिस्तान कर रहा है, ये एक साल पहले होने चाहिए थे। आपकी टीम इस पर जो 15 रुकनी स्क्वाड बनाया था वो एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें आपको पता होता कि फर्स्ट चॉइस 11 कौन सी है, बैकअप कौन सा है, बैकअप आपका कौन सा है। अगर आप अभी डिसाइड करेंगे कि आमिर होने चाहिए, जूनियर होने चाहिए, हसनैन होने चाहिए, तो ये सबके लिए प्रेशर मोमेंट है, सबके लिए जो है वो एक अंडर प्रेशर लाने वाली बात है। वर्ल्ड कप के अगर आप ये एक्सपेरिमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन भारत पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने जहां ऑस्ट्रेलिया खिलाफ वनडे सीरीज में 6-7 खिलाड़ी को रेस्ट कराया, उसके बावजूद आप 17 खिलाड़ी लेके गए, तो ये बात आइडियल नहीं होनी चाहिए थी। आपके पास 15 रुकनी स्क्वाड ही आना चाहिए था। हाँ, 17 रुकनी स्क्वाड का इस तरह सवाल कर लेते कि अगर आपके पास मैचेस याद आए तो खिलाड़ी को रेस्ट कराने के लिए आप करते। अब मसला ये है कि पाकिस्तान का फर्स्ट चॉइस पेस बॉलर कौन है, आपका लेग स्पिनर कौन होना चाहिए, आपके पास लेग पावर हिटर कौन है, ये 3-4 वो एलिमेंट है जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। और आपने अभी तक वर्ल्ड कप से पहले डिसाइड ही नहीं किया, आसिफ अली वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी तक वादे नहीं है, जुनेद होंगे, आमिर होंगे, हसनैन होंगे, यहाँ डाउट है, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस जो है वो मैच विनिंग नहीं है, इमाद वसीम का रोल इस टीम में अब तक क्लियर नहीं है कि जब वो एज अ स्पिनर अगर वो नहीं चल पाते या फास्ट या अगर उनकी जरूरत नहीं होती तो क्या वो मैच विनिंग बैट्समैन है, क्या उन्होंने मैच अब तक फिनिश किए नहीं किए। तो ये सारी वो बातें हैं जिनको पाकिस्तान को सवाल ढूंढने के लिए 5 वनडे मैचेस मिलेंगे। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आप टीम कम्बिनेशन तो ट्राई करें लेकिन साथ ये चीज वादे कर लें कि आपने 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा खिलाना है और आपकी 11 कौन सी होगी, तब जाके आप कॉन्फिडेंस देंगे उन लड़कों को जो मार्केट जो फिर जो प्रॉपरली इस वनडे सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस दिखाए। अगर आपने उनको इस बहस में उलझाया हुआ अब तक
कि अगर आपने एक परफॉर्मेंस दी तो आप बाहर हो जाएंगे. आप देखें ना कल, अब आप बात करते हैं स्टैन की, तो उनको जब आपने कल खिलाया उनको विकेट नहीं मिली तो अब लोग कह रहे हैं जी वो उनकी अफादियत है. इसी तरह यासिर शाह को लेके तो चले गए, लेकिन क्या यासिर शाह की टीम में जगह बनती थी? क्या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो पाकिस्तान की वनडे टीम में खेले? तो ये सब कुछ पाकिस्तान को 2 साल पहले करना चाहिए था, 1 साल पहले करना चाहिए था. एशिया कप में भारत ने विराट कोहली को नहीं भेजा, उन्होंने यंग ऑप्शन ट्राई किए, हमने वहाँ फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भेजा तब भी हम नहीं जीत सके. तो ये काफी कुछ है सोचने के लिए.
सही. अच्छा अब्दुल गफार भाई, जाने से पहले ये बताइएगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 5 ODIs में अगर पाकिस्तान वाकईतन ये सीरीज जीतना चाहता है. वही ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्या कहते हैं तजुर्बाती सीरीज के तौर पे नहीं खेल रहे, तो क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी होगी मैचेस जीतने के लिए, और क्या कॉम्बिनेशन लेके खेलना होगा, कौन से प्लेयर्स आप क्या समझते हैं कि सरफराज का क्या बैटिंग नंबर होना चाहिए, क्या उन्हें वन डाउन आना चाहिए या उन्हें वाकईतन 6-7 पे खेलना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर आप कैप्टन होते?
जो है ना वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कल वो बैटिंग करने नहीं आए, लोग सवाल उठा रहे हैं. ठीक है चले, T20 था, कैप्टन की सोच है दूसरे प्लेयर को चांस देने की थी कि एक मैच में ऐसा चलता है. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आयन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान है तो T20 बैटिंग करने ना आते. ये मतलब एक डिफरेंट किस्म का माइंड सेट है. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की प्लानिंग 5 घंटे मैचेस के लिए होनी चाहिए कि आप अपने जो देखें. आपको मैं एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान की जो टॉप 3 है इमाम, फखर, बाबर ऐसे ड्राइविंग स्टार्स है. आप प्रॉब्लम आपके मिडल ऑर्डर में आएगा, फिर लेट ऑर्डर में आएगा जब मैच फिनिश नहीं हो रहा. इसी तरह जब आप बॉलिंग करेंगे तो आपका शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली आपको अच्छा खासा वो निकाल देंगे, लेकिन मिडल ऑर्डर में आपका स्पिनर का प्रॉब्लम नजर आएगा. तो इस वक्त पाकिस्तान को ये चीजें तराश करने की जरूरत है कि आप 5 वनडे के मैचेस की जो वनडे सीरीज है इसमें आप जिसको खिलाना है ना
प्रॉपर
मौका दें. अगर यासिर शाह को खिलाना है ना वर्ल्ड कप में, आपने समझते हैं शताब खान नहीं हुए तो यासिर को 5 वनडे मैचेस खिलाएं. तो ऐसा ना हो कि आप यासिर पे एक मैच खिलाएं, एक ड्रॉप करें, उसका क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? कभी भी वो एक उस मूड में नहीं आएगा जहां वो विकेट टेकिंग, वो तो अपने बारे में सोचता रहेगा. तो आपको बड़ी हद तक ये क्लियर करने की जरूरत है कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है और आप उसको पूरा मौका दें. इस
फॉर्म
को वर्ल्ड कप खिलाना तो फिर आमिर को 5 वनडे खिलाएं.
समझते
नहीं आमिर फॉर्म में नहीं, जनेस को 5 वनडे मैचेस खिलाएं.
सही सही गफार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. गफार भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच. बिफोर और हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल गफार भाई जो कि डॉन न्यूज़ से मुंसलिक हैं, रीप्ले का प्रोग्राम करते हैं डॉन न्यूज़ पे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंकर हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से इनकी जो बातचीत थी वो हमने आपके लिए पेश की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्या ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान कल का मैच हारा. तो आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट आवर में. सो कीप इट लॉक्ड टू रेडियो संगम 107.9 FM.